अब देखते हैं तफसीर, इंशाअल्लाह ताला आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में तफसीर सूरतुल बकरा, डेट भी साथ लिखिए। हम आज जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले ही लेसन की कंटिन्यूएशन है, यानी हमने इस सूरत में शुरू में देखी सिफात मुत्तकीन की 1 से 5 आयत तक, फिर 6 और 7 आयत में हमने उन काफिरों को जो हठ धर्मी में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि अब उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है, उनका हाल देखा है कैसे उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, अब वो कभी नहीं इस तरफ आएंगे। और इसके बाद हमने देखा आयत नंबर 8 से, मैंने आपको बताया था 20 तक, जो कि किस तरह से मुनाफिकीन का अल्लाह ताला ने हाल खोला है। दुनिया में 3 ही किस्म के ग्रोह हैं, या तो पक्के सच्चे मोमिन या ऐसे काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते, इनकार करने वाले, या तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का, चौथी कोई चीज नहीं है। हम भी इन्हीं तीनों ग्रोहों में से, अल्लाह ताला माफ करे आखिरी 2 ग्रोहों में होने से, मगर इन तीनों में ही कहीं ना कहीं हर कोई मौजूद है। तो अपने आप को भी पहचानना हो तो फिर इन्हीं में इंसान को देखना चाहिए कि वो कहां पे खड़ा हुआ। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना करो, कहा जाता है मतलब कौन कह रहा है, यानी इसका मतलब है कि कोई लोग इनको कहते हैं, कोई लोग इनको कह रहे हैं तुम जमीन में क्यों फसाद करते हो। फसाद क्या था? फसाद यही हम सोचते हैं फसाद क्या है, हम सब सोचते हैं फसाद है पता नहीं कोई खून खराबा कर रहे होंगे, नहीं, फसाद का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी, फसाद का मतलब है गुनाह, इसको फसाद कहा गया है। हम फसाद अपना माना लेते ना, वो भी एक फसाद की किस्म हो सकती है, लेकिन असल माना यहां पे फसाद का क्या है, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी करना। ये जमीन अल्लाह की है, यहाँ पे अल्लाह ही का कानून चलना चाहिए, अल्लाह ही का हुक्म चलना चाहिए, चाहे हमारी अपनी जात है, अपनी इंडिविजुअल जिंदगी है, या मुल्क है हमारे, या कोई भी जगह, वहां पे क्या चलना चाहिए, अल्लाह का कानून। लेकिन जब इंसान नाफरमानी पे उतर आता है, सरकशी पे उतर आता है, गुनाहों में पड़ जाता है, तो वो एक फसाद कर रहा है, और वो मुआशरे में भी एक ऐसी फिजा पैदा कर देते हैं कि एक बुराई करता है ना, उसको देख के 4 और करने लगते हैं, उन 4-5 को देख के और 4-5 करने लगते हैं, इस तरह से बुराई फैलती है। आप देखते होंगे कितनी जल्दी फैलती है, आप देखते हैं लोग बात करते हैं फलां जगह पे, फलां की शादी में देखा तो उन्होंने ऐसे किया था, हम भी चलो ऐसे करते हैं, फलां की वीडियो में देखा तो वो ऐसे कर रहे थे, हम भी चलो वो करते हैं, फलां ने देखा था ये कैसा ये पहनावा था, हम भी ऐसे। देखें जो अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं ना, ये फिर माशरे में इस तरह फैलते हैं। तो फसाद मत करो, यानी अल्लाह की नाफरमानी मत करो, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया हुआ उनसे मना हो जाओ, ये जब उनको कहते थे। तो आगे से वो कहते थे कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो इसलाह करने वाले हैं, हम का फसाद करने वाले, हम तो इसलाह करते हैं। यानी जब इनको कहा जाता भाई चलो अब अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाओ, चलो फिर किसी गजबात के लिए निकलो, तो आगे से इनका काम क्या होता था, ये एक फसाद है कि जब वो नहीं आ रहे, जब वो पीछे रह रहे हैं, कहते थे देखो हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि मिलजुल के रहो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है उनको उनकी जगह पे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ये उनको कहने की कि भी इस्लाम ले आए या लड़ने भिड़ने की, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस अपने अपने काम करो, अपनी जिंदगी से मतलब रखो, तो हम तो पीस मेकर हैं, हम तो इसलाह करने वाले हैं, लड़ाई झगड़े तो तुम करते हो, समझ आई ना बात। और फसाद क्या होता है, और फसाद है जो माशरे के अंदर जितनी ये बुराइयां ना इंसाफियां है ना, इनको भी फसाद कहा जाता है, ना इंसाफी और जुल्म, ये फसाद है असल में। मसलन क्या था, यतीम का माल खा लेना, बुत परस्ती करना, औरतों को कोई वक्त ना देना, विरासत में से खा लेना, ये सब फसाद है, करप्शन फसाद है। आज देखें जिस इस्लाम में इस फसाद को बदलने का है, वो ही लोग आज दुनिया में फसाद करने वाले बन गए, वो ही मुसलमान ये फसाद फैलाते फिर रहे हैं। सारी जो नाइंसाफियां हैं ये इनमें मुसलमान इन्वॉल्व है। तो फसाद तो हमने तो खत्म करना था, हम खुद ही फसाद करने लगे। तो वो कहते थे हम तो हिकमत से चल रहे हैं, मसलहत से चल रहे हैं, तो हम कहाँ फसाद कर रहे हैं। उनको कहा जाता था तुम देखो तुम फसाद कर रहे हो, फसाद क्या है, अपनी जगह से कोई चीज हट जाना। और अल्लाह के हुक्मों को जब भी तोड़ा जाता है ना माशरे के अंदर, किसी माशरे में अल्लाह के हुक्म को तोड़ा गया, मिसाल के तौर पे शादी एक हलाल जरिया है और उससे औलाद होनी चाहिए, लेकिन जब इस कानून को ही अल्लाह के तोड़ दिया गया और निकाह नहीं किया और उसके बगैर ही औलाद हो रही है, तो ये क्या फसाद है ये, और ये माशरे में क्या करेगा, एक कियोस क्रिएट करेगा, एक बदअमनी, एक बेचैनी, एक ब्रोकन फैमिलीज, और आगे से आगे कितने फसाद फिर पैदा होते हैं, उन बच्चों का क्या होता है, उनकी तरबियत का क्या होता है, फिर वो आगे क्या क्रिमिनल्स बनते हैं। आप देखेंगे जिन कम्युनिटीज के अंदर ये चीज ज्यादा है उनके अंदर जराइम भी ज्यादा है। इसी तरह एक और चीज एग्जाम्पल ले लें फसाद की, जब अल्लाह के कानून को तोड़ा गया, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया, लेकिन जब अल्लाह के कानून को तोड़ दिया गया तो फिर क्या हुआ, अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर, उसका नतीजा क्या निकला, चोर बाजारी, लूट मार, डाके, लोग एक दूसरे से लूट कसूट कर रहे हैं, इधर से लो ये क्यों ज्यादा पा रहे हैं, मेरे घर में रोटी नहीं है और ये देखो जरा इसके कुत्ते भी रोटी खा रहे हैं, तो वो फिर क्या करेगा, कत्लो गारत भी होगा, किसी को मारेगा दाड़ेगा, कहीं गुस्सा भी निकालेगा, करप्शन भी होगी, कोई कहेगा यहां से नहीं मिलता तो यहां से ले लो, इनसे लूटो किसी तरह, फिर ये सभी चीजें होंगी ना, फिर मुल्क भी मकरूज होंगे, फिर उन मुल्कों में क्या हालत हो जाएगी गुर्बत की। तो अल्लाह का कानून जब टूटता है तो एक जगह नहीं इफेक्ट आता, वो थ्रू आउट इफेक्ट आता है, पूरे माशरे में वो फैलता है फिर। तो अल्लाह के कानूनों को तोड़ना फसाद है, अल्लाह की नाफरमानी है, फसाद है। तो फसाद फिर अर्द मत करो। अब उनका फसाद क्या था कि जब नबी अलैहिस्सलाम कोई बात कह रहे हैं तो वो सुन ही नहीं रहे, मान नहीं रहे, और उल्टा जब उनको कहा जा रहा है कि मत करो ये फसाद, मत ये नाफरमानी करो, तो अपने गलत काम को कहते हैं हम तो मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब मुनाफिक की एक और क्या निशानी है कि वो एक तो जमीन में खुद फसाद करने वाले होते हैं, यानी तोड़ते हैं अल्लाह के हुक्मों को, नंबर टू क्या करते हैं, अपने गलत काम को सही समझते हैं, यानी गलत करेंगे और कहेंगे कि अच्छा है। और शैतान के बारे में भी जिक्र कुरान में आता है कि वो मुजयन करता है बुराइयों को इंसान के लिए, और ये वो ही कर रहे होते हैं कि इनको इनके बुरे काम अच्छे लगने लगते हैं, यानी शैतान इनको दिखा रहा है जैसे वो उसको वैसे लगने लगते हैं, उसको खूबसूरत लग रहे हैं वो काम, वो कह रहा है मैं तो मुस्लिम हूं, मैंने कहां फसाद किया, फसाद तो तुम कर रहे हो, समझ आई बात, और वो बुराई को भलाई समझ रहा है। कितनी दफा ऐसे होता है कि गुनाह के काम हैं, हमें पता है ये अल्लाह की नाफरमानी है, उसको हम अच्छा समझने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं ये तो अच्छी चीज है, और लोगों भी कहते हैं तुम भी ऐसे करना, और खुद भी वही करते हैं। क्या उस वक्त हमें नहीं शऊर होता कि ये अल्लाह की नाफरमानी है जो मैं कर रही हूं, और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, बेशुमार है, और हम उन पे खुश होते हैं, अच्छा समझते हैं उनको। आप लोगों के जहन में भी जरूर कोई आ रही होंगी मिसालें, मैं देना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो हो जाता है कि भी बार बार एक बुराई को ना ही मेंशन किया जाए, लेकिन हर एक को पता है बात सिर्फ समझने की क्या है, बुराई को भलाई समझने लगना, फसाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मुस्लिम। तीसरी बात क्या पता चली साइकिन की, गलती को नहीं मानते, किस वो बता रहा है और साफ पता चल रहा है फिर भी अपनी गलती को नहीं मानना, हम तो मुसले हैं, हम तो इसलाह करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या क्या फैसला है, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, यही तो फसाद करने वाले हैं लेकिन ये शहूर ही नहीं रखते, इनको इस बात का समझ ही नहीं है। अच्छा फिर क्या बात पता चली कि मुनाफिक कैसा होता है, ना समझ, उसको समझ ही नहीं है। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, हम पढ़ाई लिखाई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, समझ भी, ये भी एक इंसान की इतनी सलाहियत होना कि वो समझ ले कि ये मेरी गलती है, ये भी बहुत बहुत कम ही किसी को मिलती है। ये शऊर होना, समझदारी, ये शऊर से खाली होते हैं, सेंस नहीं होती इनको। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, और जब मुलाकात करते हैं वो उन लोगों से, किन से मुलाकात करते हैं, इन्हीं की बात हो रही है जिनके पीछे से बात चल रही है, किन से ये लोग मुलाकात करते हैं, ईमान वालों से, पक्के सच्चे ईमान वालों से जब मिलते हैं, कालू तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, यानी उनके सामने कहते हैं हम ईमान लेकर आए। पहले भी हमने पढ़ा था ना कि ये ईमान के दावे करते हैं, कहते तो मुंह से यही है हम ईमान लाए, आयत नंबर 8 में हम देख चुके हैं। अब ये मुसलमानों के यानी पक्के सच्चे मोमिनों के पास आके बार बार मुंह से कहते हैं, क्योंकि अब दिल में तो ईमान है नहीं, तो मुंह से बोल के इसका इजहार करना पड़ता है ताकि हमें सच्चा मान लिया जाए। वह इदा खलऊ, और जब वो खलवत में होते हैं यानी अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों के, कालू वो कहते हैं, इन्ना मा अकुम, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, इन्ना मा नहनु मुस्तहजी हूं, बेशक हम तो इस्तेजा करने वाले, मजाक कर रहे थे उनके साथ। ये उनकी एक साइकी बताई गई कि इनके रवैये कैसे होते हैं, जब बातिन में इंसान के खोट होता है तो फिर वो इसी तरह करता है। एक तरफ जाते हैं मोमिनों के पास तो उनसे कहते हैं हम ईमान लाए, हमें भी ईमान वाला समझो, हम तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुम में से ही हैं। दूसरी तरफ शैतानों के पास जाते हैं, कौन शैतान, शैतान से मुराद यहाँ पे इबलीस नहीं है, वो वाला शैतान नहीं जो के जो जिसको अल्लाह ताला ने निकाला था, इबलीस हम उसको कहते हैं। शयातीन से मुराद यहाँ पे हैं बड़े बड़े सरदार जो के कुफार के थे, मुनाफिकीन के या यहूद उलमा के, जो इनको मना करते थे कि मत ईमान लेकर आना, उनको यहाँ पे शयातीन कहा गया, वो इनके साथी थे वो, और वो बड़े थे लीडर, बड़े वाले सरदार। तो इससे हमें पता चला कि इंसानों में भी शयातीन होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जिन्नों में होते हैं, इंसानों में भी हर बहकाने वाला, सरकशी करने वाला, वो शैतान होता है। हदीस में आता है ना कि हम जिन्नों और इंसानों के शैतानों से अल्लाह की पनाह मांगते, जब भी पनाह मांगे जिन्नों के शैतानों से तो मांगते ही, इंसानों के शैतानों से भी पनाह मांगे, क्योंकि इंसानों में अक्सर हम लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और समझते ही नहीं है कि ये तो शयातीन है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते से दूर करने वाले होते। तो ईमान वालों के पास जाके क्या कह रहे हैं, हम तो तुम जैसे ही है ना, हम भी ईमान वाले हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब उनके पास जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, ऐसे ही हम उनके साथ थोड़ा ही हैं। इससे क्या पता चला, कौन सी साइकोलॉजी पता चलती है कि एक ऐसा इंसान जो किसी का भी नहीं है, ना वो इनके हैं ना वो उनके हैं, दरअसल वो अपने मफाद के बंदे हैं, एक ऐसा इंसान जो के वफादारी में किसी के साथ भी नहीं होता, सिर्फ वो अपने मफाद से ही वफादार होता है। वो कहते ना कि भाई चलो तुम उधर हो, हवा हो जिधर की, जिधर को देखते हैं कि इधर मुझे फायदा मिल सकता है, उधर ही बन जाते हैं, उनके साथ ही बैठ जाते हैं, जहां पे लगता है कि यहां पे हमें कोई फायदा मिलेगा ना, तो बस उनके साथ लग जाते हैं। और इस्तेज़ा मैंने आपको बताया क्या है, किसी को हकीर बेअकल समझ के मजाक उड़ाना। तो कहते हैं, हम तो उनके साथ इस तरह तो बेअकल से लोग, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे, असल में तो दिल में तो हम तुम्हारे साथ हैं, तो दिल में तो किसी के साथ भी नहीं है। तो यहां से हमें इनकी साइकोलॉजी पता चली है। आप देखते हैं बाज दफा अल्लाह ताला हम सबको माफ करें, इस किस्म के रवैये हम भी रखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि कोई दीनदार लोग हैं, दीन की मजलिस है, वहां पे तो उनके जैसे बन गए और उनको बताने लगे, बस आपको पता नहीं है मैं खुद बहुत तहज्जुद गुजार, मैं तो खुद इतनी नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तो खुद ऐसे करती हूँ, इतने जमीन आसमान के किलाबे मिलाने लगे, बच्चे भी मेरे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने नेक हैं कि बस। अच्छा फिर आप उनको किसी दूसरी मजलिस में देखो जो शैतानी मजालिस होती हैं, जिनमें गुनाह की बातें होती हैं, तो ऐसे लगता है कि इनके पास से तो ईमान और नेकी छू के भी नहीं गुजरी, वहां पे उनके जैसे बन के बैठ जाते, उन्हीं की जैसे बातें, ना कोई अल्लाह रसूल का पता, ना कोई नमाज का एहसास, ना कोई सी चीज का नहीं, और फिर वहां पे बैठ के वो जो दीन वाले लोग होते हैं उनका मजाक भी करते हैं, फिर उनके साथ मिल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेस। जी हाँ, ये मुनाफिकाना रवैये हैं, हम किसी को भी मुनाफिक नहीं कह सकते, याद रखिए इस दुनिया में, क्योंकि मुनाफ़कत दिल का एक अमल है और हम दिलों में झांक नहीं सकते, मगर मुनाफिकाना रवैये कैसे होते हैं अल्लाह ताला ने दिखा दिए कि जब दिलों में खोट होता है ना, तो जाहिर में ये इसके समरात होते हैं, ये नताइज निकलते हैं, जाहिर में ये एक्शंस हो रहे होते हैं, जाहिर है हमारे जो अमल है वो हमारे दिल की कैफियत को तो डिपिक्ट करते हैं ना, उसका अक्स होते हैं, हम अपने अमल से जाहिर करते हैं कि हमारे दिल में क्या है। तो जो इनके रवैये हैं वो कैसे हैं, इधर बैठे तो इनके साथ हो गए, उधर बैठे तो उनके साथ हो गए, ऐसे लोगों को हम दुनिया में क्या कहते हैं, दोगले, दो मुंह वाले, दो रुखे, दुनिया में भी कोई ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और एक और भी मुहावरा इनके बारे में कहा जाता है, इस किस्म के लोगों के बारे में, आस्तीन के सांप, क्योंकि जिसके साथ बैठते उसको तो ये यकीन दिला देते हम तुम्हारे साथ हैं, वो बेचारा भरोसा कर लेता है, वो उनके साथ सारी बातें कर लेता है, राज शेयर कर लेता है, उसके बाद वो दूसरों के पास जाते हैं, वहां पे सब बता देते, आस्तीन के सांप हुए ना, ये दुश्मन जो जाहिरी दुश्मन है उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? इसलिए कि पीठ में छुरा घूमते हैं, नजर जो नहीं आते, इनकी दुश्मनी पता नहीं चलती, दोस्त के भेस में दुश्मन होते हैं, जाहिर ही क्या दिखाते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं, अंदर क्या दुश्मनी पाली हुई। आप बताएं आपको ज्यादा डर किस दुश्मन से लगता है, कि तो वो है जो आपके सामने है, खुल के कहता है मैं दुश्मन हूं, तो आप कहते हैं ठीक है भाई दुश्मन है, तो आप उससे अपना बचाव भी करते हैं, लेकिन एक वो दुश्मन होता है जो दोस्त के भेस में होता है, वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप उससे कोई बचाव नहीं रखते, हम आप उसको अपना समझ बैठते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कालू आमन्ना, हम भी तो ईमान वाले हैं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ये इतनी बुरी चीज है, ये आम जिंदगी में भी बहुत बुरी चीज है, आम जिंदगी में भी एक मुनाफिकाना रवैया है, लेकिन दीन के मामले में तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं, इसी वजह से इनका ठिकाना जहन्नुम का भी सबसे निचला दर्जा है, क्योंकि जो इनकी दुश्मनी है वो ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाती है, लोग इनको देख के तो यही कहेंगे ना ये भी मुसलमान है, देख लो ये भी तो मुसलमान है, ये तो ऐसे नहीं करते, वो तो पता नहीं पागल है जिनका दिमाग खराब है, असल तो ऐसे ही मुसलमान होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे होते हैं, इस्लाम की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनके रवैये किस किस्म के हैं, तो क्योंकि अंदर से हम कोई नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने रवैये बता के हम सबको ये दिखाया है कि हम अपने अंदर भी टटोलें, जब हमारे अंदर ये सिम्टम हम देखें तो हम अलार्म्ड हो जाएं, हम एकदम चौकन्ने हो जाएं कि ये सिम्टम तो मुनाफ़कत का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिधर बैठती हूँ वैसे ही हो जाती हूँ, गुनाहों की मजलिस में चली जाऊं तो उसमें मैं शेर हूं आगे आगे, और दर्स में जाके बैठ जाऊं तो मेरे से ज्यादा कोई नेक पारसा बीबी नहीं, मस्जिद चली जाऊं तो मेरे से ज्यादा कोई नेक नहीं नजर आता, लेकिन दूसरी तरफ मुझे कहीं और कोई देख ले तो पहचानने से ही इनकार कर दे कि ये मुसलमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों में भी बुरे ही रवैयों में आए, या दीन की मजलिस में भी गुनाह के काम करें, मगर ये मतलब है कि अपने रवैयों को फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुनाफिकाना तरीके हैं और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि मुनाफ़कत की एक रमक भी हमारे अंदर हो, क्योंकि जिसके अंदर जितना ज्यादा ये सिम्टम्स है वो उतने दर्जे का मुनाफिक है। अच्छा, उन्होंने कहा हम तो उनसे मजाक करने वाले हैं, फिक्र ना करो, हम उनके पास जो जाके बैठते हैं ना, तो हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं। अल्लाहु यस्तहजीउ बिहिम, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह मजाक करता है उनसे। तुम क्या मजाक करोगे मोमिनों से, अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। अच्छा, अब इस्तेहजा कोई अच्छी चीज तो नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला के लिए क्यों आया किसी को हकीर समझ के उसके साथ मजाक करना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं, अच्छा ट्रेड तो नहीं। अल्लाह ताला की ये सिफात में से नहीं है, देखिए अल्लाह ताला के नामों में से मुस्तहजी नहीं है, बल्कि यहां पे फेल कहा गया कि अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है, ये क्यों ऐसे कहा गया। ये कहते हैं, जिसको कहते हैं ना जैसे को तैसा, कि जैसा तुमने किया वैसा अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा, तुम ये काम करते हो अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। याद रखिए जितने भी गुनाहों की सजाएं हैं ना, वो भी मुमासलत रखती हैं, जैसा गुनाह है उसी किस्म की उसकी सजा है। तो यहां पे भी वो इस्तेजा करते, अल्लाह उनसे इस्तेजा करेगा और करता है, दोनों ही माने हो गए ना, मुजारे है मैंने बताया था। तो अल्लाह ताला ने यहां पे क्यों फरमाया, अल्लाह ताला देखें ये भी फरमा सकते थे कि तुम मोमिनों से मजाक करते हो तो ठीक है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया अल्लाह इस्तेजा करता है। सुभान अल्लाह, यहां से पता चलता है कि अल्लाह सच्चे मोमिन जो उसके प्यारे बंदे होते हैं ना, अल्लाह उनके दिफा में खुद खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह खुद मजाक करता है, अल्लाह खुद मजाक करेगा, यानी ये नहीं कि मोमिन मजाक करेंगे, अल्लाह करेगा, अल्लाह खुद डिफेंस में आ गया। अल्लाह ताला, क्योंकि जो मोमिन है अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला देखें फिर उनकी तरफ से अल्लाह मुकाबले में आ जाता है, ठीक है, उनको फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह ताला कह देता है उनकी तरफ से। तो इससे हमें एक बात बहुत अमल की अपने लिए समझनी चाहिए, जितने भी मैं आपको ये जिस्ट बताती हूँ ना बातों की, ये आप साथ साथ लिखें अमल की बात, एक हेडिंग लगाया करें अमल की बात, आप बाद में जब अपने नोट्स रिवाइज करें तो उसको हाईलाइट किया करें, अमल की बात आगे लिखें जो मैं आपको बता रही हूं। पिछली बातों में भी मैंने ये जो आपको रवैयों का बताया, ये भी क्या है, अमल की बात, कि हमने क्या अपने लिए देखा, हम क्या अपने लिए इसके अंदर देख रहे हैं, वो है अमल की बात हमारे लिए। बाकी आयत समझना वो एक तफसीर है, और अमल की जो बातें हैं उनको हम सेपरेट लिख के फिर उसके बाद उनसे बार बार उनकी रोशनी में अपना जायजा लिया करेंगे, ठीक। तो अब यहां पे हमारे लिए अमल की बात क्या है, कि इसका मतलब है कि अगर मैं जुल्म नहीं करती, अगर मैं सच्ची रहती हूं, अगर मैं खुद अपना मामला सही रखती हूं, तो याद रखें एक बात, कोई मेरे खिलाफ कितनी भी साजिशें करे, मजाक उड़ाए, प्रोपोगेंडास करे, समझ लें कि मैं अगर खामोश रहती हूं तो मेरी जगह अल्लाह मेरा दिफा करेगा, वो मुकाबला करेगा। अक्सर ऐसा होता है ना, हम खुद खड़े हो जाते हैं, इसने मुझे ऐसे कहा, मैं तो इसको खुद बताऊंगी, मैं जरा इसको सुनाती हूं, तो हम खुद मुकाबले पे आ जाते हैं, हम खुद ही बदले लेते रहते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, अपनी एनर्जी वहां पे खपाते हैं, अपना दिमाग भी खराब करते हैं, और नतीजा कुछ भी नहीं होता। हालांकि ऐसे तमाम लोगों के जवाब में क्या करना चाहिए, अल्लाह को आगे कर दे, कि इनकी शरारतों का जवाब अल्लाह ही दे, और सब्र करके तो देखें फिर अल्लाह ताला देखें कि कैसे दिफा करता है, अल्लाह उनको खुद जवाब देता है। ये जो इस्तेजा होता है ना, बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, जब कोई हकीर समझ के और मजाक उड़ाता है, ये आसान नहीं होता सहना, लेकिन जब कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला खुद उसको जवाब देगा, बशर्ते के जिसके साथ वो कर रहा है वो सच्चा मोमिन है। तो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि मोमिनों को कोई बेवकूफ करे कहे या उनका मजाक उड़ाए। तो देखें अल्लाह ताला किस तरह अपने प्यारों के लिए खड़ा होता है। वह यमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यअमहून, और फरमाया वो, और वो अल्लाह ताला एक तो ये कि इस्तेहजा करता है। अच्छा एक और बात रह गई इसमें, मैंने आपको अभी क्या बताया, इस्तेहजा करता है और करेगा। करेगा का मतलब क्या, यानी कयामत के दिन अल्लाह उनको कैसे जवाब देगा इस इस्तेहजा का, कि अल्लाह ताला उनको नूर देगा उस वक्त में जिस वक्त मुकम्मल अंधेरा होगा, तो इनको नूर दिया जाएगा। लेकिन जल्द ही क्या होगा, ये नूर इनसे छीन लिया जाएगा और ये अंधेरों के अंदर हो जाएंगे। इन्होंने मजाक किया था ना दुनिया में मोमिनों के साथ, लो तुमसे भी मजाक किया गया, दिया गया फिर छीन लिया गया। अब दिया गया बड़े खुश हो गए, हम भी अमान पा जाएंगे, लेकिन फिर इनसे ले लिया गया। अब ढूंढ रहे हैं, अब पुकार रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं मोमिनों को, हमें ईमान, अब नूर दे दो, अपने नूर में से अब हमें थोड़ा सा दे दो। ये इनके साथ अल्लाह मजाक करेगा। दूसरा एक और भी होगा मजाक, इनको पुकारा जाएगा जन्नत के दरवाजों से कि आ जाओ इधर आओ, ये भागे जाएंगे कि हम भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो एकदम जब करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर दूसरे दरवाजे से पुकारा जाएगा इधर आओ इधर आओ, ये उधर को भागेंगे। जब कभी करीब पहुंचेंगे वो दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा, फिर तीसरे दरवाजे से पुकारा जाएगा आ जाओ इधर से आ जाओ जन्नत में एंटर हो जाओ, उधर को भागेंगे, मगर करीब पहुंचते वो भी बंद कर दिया जाएगा। तुम मजाक करते थे ना, तुम उनका मजाक करते थे जो अल्लाह के प्यारे थे, जो सच्चे थे, वो पक्के थे, उनको कहते थे बेवकूफ है, ये तो पागल है, क्रेजी पीपल, ये कहते थे, उनके नाम इस तरह से लेते थे, उनके मजाक बनाया करते थे, उनको हकीर समझते थे। लो अल्लाह ताला तुम्हारा अब मजाक करता है, अल्लाह अकबर। और दूसरा अल्लाह ताला इनके साथ क्या करेगा या करता है, वह यमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यअमहून, ढील दे रहा है उनको फी तुगयान, उनकी सरकशी में, ये हद से निकले ना तो अल्लाह ने भी इनको ढील दे दी। या अमाहून कहते हैं भटकने को, या हैरानो परेशान हो जाने को, दिल के अंधेपन को, शौक में आ जाने को, वो भटक रहे हैं, अंधे बने फिर रहे हैं, सरगर्दा, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ने इनको छोड़ा हुआ इनकी सरकशी में, ढील दी हुई है इनको। यानी क्या मतलब कि अल्लाह ताला इनको फौरी नहीं पकड़ता। हम क्या सोचते हैं ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं इनको तो कोई ढील नहीं मिलनी चाहिए, जितने भी जालिम हैं, जितने भी कोई बुरा कर रहे हैं, इनकी पकड़ क्यों नहीं होती। तो याद रखिए अल्लाह ताला का अपना तरीका है पकड़ करने का, अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता बल्कि वो ढील देता है। ढील देने में क्या है कि अल्लाह ताला इनको और आसाइशें देता है, और चीजें देता है, और नियमतें देता है, उनके ऊपर बड़ी बारिश होती है नियमतों की, फलते फूलते हैं, और उसमें वो क्या समझते हैं कि हम तो ठीक ही हैं ना, अगर हम गलत होते तो भला हमारे ऊपर इतनी ऐसी चीजें आती क्या, इतनी आसाइशें हमें मिलती क्या, देखो हम ऐश कर रहे हैं। देखिए ना, अगर फौरी मुसीबत आ जाए, मसलन किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई बड़ा कोई ऐसा बुरा काम किया, उसका बच्चा बीमार हो जाता है, या उसकी नौकरी चली जाती है, या उसके ऊपर कोई और आफत आ जाती है, तो एकदम डर जाता है, कहता है हाय देखा मैंने ऐसा किया था ना, जरूर फलां की आ लग गई है, जरूर फलां जो मैंने गलत चीज की थी उसके साथ जुल्म किया था ना, देखो जरूर वो मेरे सामने आ रहा है। फिर भी इंसान कहीं सोचने पर मजबूर हो ही जाता है, अब जमीर कहीं ना कहीं कचोके लगाने लगता है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर इंसान गुनाह करता है, बुरा करता है, इस तरह के डबल फेस रवैये रखता है, मुनाफ़कत करता है, और फिर वो फलता फूलता भी जा रहा है, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो क्या होगा, कभी वो सोचेगा मैं कुछ गलत करना, क्या कभी खुशहाली में हम कभी सोचते हैं कि कोई गलती है मेरी? नहीं, कभी हम किसी अपनी गलती गुनाह को सोचते तक नहीं है। जिस वक्त खुशहाली होती है, जब सब अच्छा होता है, सेहत भी है, ऐश भी है, सैरें भी हो रही हैं, मजे भी आ रहे हैं, जॉब में भी तरक्कियां हैं, बिजनेस भी अच्छा जा रहा है, घर में भी सब खैर आफियत है, हम क्या सोचते हैं कोई हम अच्छा ही कर रहे हैं जो ऐसा हो रहा? कभी नहीं हम सोचते कि कहीं ये मुझे झील तो नहीं मिली। याद रखें, अगर कोई इंसान गुनाहों में है, कुछ गलत कर रहा है, फिर भी उसको छुट्टी मिली हुई है, फिर भी उसके लिए पकड़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब समझ जाए कि अल्लाह ताला ने रस्सी दराज की हुई है। रस्सी दराज करने को ऐसे समझे, मसलन एक एक मिसाल से आपको समझाती हूँ कि एक जानवर है, उसकी रस्सी उसका मालिक दराज करता है, यानी रस्सी बहुत ज्यादा, मतलब 1 माइल की रस्सी उसकी डाल देता है उसके गले में। अच्छा, अब वो क्या जानवर समझता है कि मैं तो फ्री हो गया हूं, वो भागता है भागता है, उसको लगता है कि बस मैं, रस्सी तो मेरे गले में है ही नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला, मैं जहां मर्जी भागू। वो 1 मील के अंदर वो समझ रहा है कि मैं आजाद हूं। अच्छा, वो तेज भागता है, तेज भागता है, भागता जाता है, उसकी स्पीड कितनी तेज होगी, क्योंकि वो कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं समझता ना, वो भागेगा, सरकश ही ना, तुगयानी, हदों से निकलना चाहता है। तो जब वो हदों से निकलने लगा है, आप देखें जब 1 माइल की रस्सी उसकी पूरी होती है और वो तेज दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब वो 1 मील पे पहुंचता है, तो उस वक्त क्या होगा, उसकी गर्दन पीछे खिंच जाएगी, वो चौक हो जाएगा और मरने लगेगा, उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि वो तो अपनी पूरी स्पीड में जा रहा था, लेकिन वो भूल गया था इस बात को कि मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल है, और उसने मेरी रस्सी ढीली की भी अभी, और जिस वक्त वो मेरी रस्सी खींचेगा तो तब क्या हाल होगा। अब अगर किसी की रस्सी इतनी छोटी है, 1 मीटर की रस्सी है, तो वो कितना भाग लेगा? वो तो भाग ही नहीं सकता, वो तो यहां तक ही जाएगा, वहीं पे उसको, वो तो भाग ही नहीं सकता, तो जाहिर है वो चौक भी उतना नहीं होगा। लेकिन जिसकी रस्सी जितनी खुली होगी, लंबी होगी, उसका चौक होना भी कितना जबरदस्त होगा। इसी को कहते हैं इस्तेदराज, अल्लाह का कानून है, इस्तेदराज है। और उस कानून में क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सनस्तदरिजुहुम मिन हैथुला यालमून, हम उनको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको समझ ही नहीं आएगी, यानी वो समझेंगे हम आजाद हैं गुनाह करने में, इतने हद से बढ़ जाएंगे, हमारी तो कोई पकड़ नहीं हो रही, उनको ऐसे लगता है, फील होने लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा। हाँ, शायद अल्लाह ने हमें इग्नोर किया हुआ है, हमारी इन गुनाहों को, हमारी इन नाफरमानियों को, तो सही है ना, फिर हमें भी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होता, आज तक कुछ हुआ? हम जितना मर्जी जुल्म कर रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं होता, आगे भी नहीं कुछ होगा। यही बेवकूफी होती है कि वो और ज्यादा सरकशी में आगे बढ़ता है, और गुनाह में ज्यादती में आगे बढ़ता है, और फिर जब वो हद से बढ़ता है ना, वही दिन होता है कि फिर अल्लाह ताला पकड़ कर लेता है, फिर वो जब फंदा लगता है गले में, तो फिर इंसान बचता नहीं है। तो अमल की बात क्या है, कभी भी अपनी खुशहाली को, अपनी लग्जरीज को, कि मेरे पास इतना कुछ है, मुझे इतना कुछ मिल रहा है और मिलता जा रहा है, और मेरी सब चीजें ठीक है, इसको ये ना समझें कि पता नहीं मैं ठीक ही हूं, ये कोई मयार नहीं होता, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिस पे आप नापें अपने अमल को, ठीक है? अमल को अलग चीज है, और ये दुनिया की ये सारी लग्जरीज मिलना, सब अच्छा होना, ये अलग चीज है। बाज दफा अल्लाह ताला इसलिए दे रहा होता है क्योंकि अल्लाह ने एक ही दफा पकड़ना होता है, तो ढील को ये ना समझें कि अल्लाह ने जो मुझे ढील दी हुई है तो मैं आप जो मर्जी करूं। और दुनिया में भी आज देखें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लोग कहते हैं कि जी देखें मुसलमान तो आज इतनी मुसीबत में, अगर ये इतने ठीक होते तो मुसीबतों में क्यों होते, देखो ना काफिर कितने मजे कर रहे हैं। इसका मतलब उनमें कोई अच्छाई है ही तो मजे कर रहे हैं उनमें, तुम लोगों तुम कोई सही नहीं होगे, तुम्हारा तो क्या दीन है जिसके अंदर फिर इतनी मुसीबतें तुम्हें आ रही। तो ये आज दुनिया में आम एक यानी थिंकिंग है कि मुसलमान तो ठीक है ही नहीं। तो याद रखिए ये स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है। इससे कभी भी ना नापे जो चीजें इंसान को मिल रही हो, अगर वो गुनाह में पड़ा हुआ है और उसको बहुत अच्छा सब मिल रहा है, समझ जाए ये ढील है या मुद्दुहुम, अल्लाह ने ढील दे रखी है। ये इधर उधर भागते फिर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने ढील दी हुई है।